ओम शांति, ओम शांति। बाबा की आज की मुरली है एक ही शब्द पर, और वो शब्द है स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने इसका बहुत विस्तार किया है। स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, कितने समय में बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से क्या प्राप्ति होती है, एक ही टॉपिक। तो स्वदर्शन चक्रधारी बाबा हम बच्चों को इस संगम युग पर बनाते हैं। चारों युगों का चक्र हम लगाते हैं, अपना दर्शन करते हैं इस चक्र में। और कौन बनाते हैं, स्वयं भगवान। और कितने समय में बनाते हैं हमें बाबा स्वदर्शन चक्रधारी, एक सेकेंड में बनाते हैं। जैसे जीवन मुक्ति के लिए कहते हैं एक सेकेंड में जीवन मुक्ति, ब्रह्मा से विष्णु बनने में एक सेकेंड लगता है, तो स्वदर्शन चक्रधारी बनने में भी एक सेकेंड लगता है। लक्ष्य मिल गया और पुरुषार्थ शुरू। तो आज बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है स्वदर्शन चक्र पर। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। और आज हमारे बीच शांतिवन से बट्टी करने के लिए जो भाई आए हैं वो आज मधुबन में आए हैं। जो शांतिवन से बट्टी जिन्होंने की पीस पार्क में हाथ उठाए, देखिए इनको, इन्होंने पहली तारीख से बट्टियां शुरू हुई है पीस पार्क में, और 30-30 भाइयों की बट्टी। एक दिन आना, एक तारीख को आए, 2-3 रहना और बट्टी करना, बिल्कुल दुनिया से दूर, अपनी जिम्मेदारियों से दूर। और फिर 4 तारीख को आज सवेरे यहाँ आए हैं, नाश्ता करके 4 धाम की यात्रा करके जाएंगे, और फिर शाम को दूसरा ग्रुप शुरू हो जाएगा 30 भाइयों की बट्टी का। तो ऐसे लगातार चलता रहेगा, बहनों की भी बट्टी होगी। तो इस प्रकार से वैसे हर वर्ष करते आए हैं, लेकिन कोविड के कारण काफी साल तक रुका रहा। 18 में किया था, 2018 में, अभी 19, 20, 21, 22, 23, हाँ अभी 24 में कर रहे हैं। ऐसे है ना, 18 में किया था ना, कौन है लीडर इनका, कौन? हाँ भाई, ओके। तो बहुत अच्छी बात है। और आज मधुबन में सिक्किम के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। वो कल नीचे आए थे, भोजन किया और सारा शांतिवन देखा, दादियों से मिला, बहुत कुछ अनुभव किया, और रात को ऊपर आए हैं। और अभी दिन में 12 बजे यहाँ आएंगे पांडव भवन का अवलोकन करने। वो अच्छे संपर्क में है, और वहाँ सिक्किम गैंगटॉक जो राजधानी है सिक्किम की, वहाँ उन्होंने जमीन भी दी है रिट्रीट सेंटर बनाने के लिए। तो इसीलिए हाँ, तो थोड़ा सा लिखा है, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह जी तामंग सह परिवार, उनका पूरा परिवार है, उनकी युगल भी बाबा की, जैसे बच्चे मेडिटेशन करती है, प्रेम सिंह जी तामंग सह परिवार आज दोपहर 12 बजे पांडव भवन आएंगे, 4 धाम की यात्रा के बाद भोजन करके पीस पार्क जाएंगे, जहां से वे उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कल शांतिवन में कार्यक्रम में कई जगह गए, सोलर और ग्रह वाटिका गोकुल गांव का अवलोकन कर शाम को माउंट आबू पहुंचे। आज ज्ञान सरोवर में क्लास करने के बाद नाश्ता कर आर्ट गैलरी का अवलोकन करेंगे और 12 बजे पांडव भवन आएंगे। तो ये सब आपको जानकारी के लिए दे रहे हैं। ओम शांति। आज 4/5/2024 है। मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। अब दिल पर भी छपना चाहिए और आज बाबा ने कहा कागज पर भी छपे, भले दिल पर भी छपे, वो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए जो भी बाबा सुनाते हैं। तो मुरली में तो आता ही है, पर ये मुरली फिर दिल में भी छप जानी चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, तो धारणा भी करनी है। प्रश्न है, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं, है ना, गर्मी होती है भाई पंखा चलाओ। आजकल तो एसी हो गया है, पर सब जगह तो एसी कूलर नहीं है, चलो पंखा तो है। पहले तो माउंट आबू में पंखे भी नहीं थे, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फिर धीरे धीरे थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी तो ये अप्रैल में जून पंखों की जरूरत होती थी, वरना सारा साल तो जरूरत ही नहीं है। कई आकर हमसे पूछते, बहन जी यहाँ कहीं भी एसी नहीं है? हम कहते जरूरत ही नहीं है, एसी की क्या जरूरत है, क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है चारों तरफ, पर बाबा के घर में तो बाहर ही मौसम है ना। तो इसीलिए आज बाबा ने पंखे का मिसाल दिया है। तो सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, गोल गोल घूमते हैं ना, तो स्वदर्शन चक्र भी क्या है, गोल गोल घुमाना, तो रिफ्रेश कर देते हैं। ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? बाबा कहते हैं, बच्चे 1 सेकंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है। क्यों जरूर बनना है स्वदर्शन चक्रधारी? क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। घुमाते हो ना स्वदर्शन चक्र, बाबा कहते 1 सेकंड लगता है बस, हम क्या थे फिर क्या बन रहे हैं, इतना सहज 1 सेकंड में हम चक्र फिरा सकते हैं। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं, तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, तो उनको समझाना चाहिए क्या मतलब है इसका। तो बाबा ने अर्थ समझाया, नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा, क्या निश्चय होगा स्वदर्शन चक्रधारी को, कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड रूप विष्णु को भी देते हैं स्वदर्शन चक्र, अकेले को भी देते हैं, अकेले नारायण को भी देते हैं, विष्णु को भी देते हैं, श्री कृष्ण को भी देते हैं। स्वदर्शन चक्र को भी समझना है तब ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बच्चे 1 सेकंड। फिर तुम बनते हो विष्णुपुरी, फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। इस समय स्वदर्शन चक्रधारी, फिर भविष्य में विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे। विष्णु वंशी बनने के लिए पहले तो शिव वंशी बनना पड़े, ऐसे ही नहीं विष्णु वंशी बनेंगे, पहले शिव वंशी बनना पड़े। फिर बाबा बैठ सूर्य वंशी बनाते हैं, तो अभी हम सब कौन है? शिव वंशी। फिर बाबा हमको विष्णु वंशी बनाते हैं, फिर बाबा बैठ सूर्य वंशी बनाते हैं, विष्णु वंशी कहो या सूर्य वंशी कहो, अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्य वंशी बनते हैं, हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णु वंशी बनने में, स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णु वंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। बनाने वाला है शिव बाबा, शिव बाबा विष्णु वंशी बनाते हैं और कोई बना न सके। ये तो बच्चे जानते हैं विष्णु वंशी होते हैं सतयुग में, यहाँ नहीं, यहाँ विष्णु वंशी नहीं है, यहाँ शिव वंशी है और ब्रह्मा वंशी है। शिव विष्णु वंशी बनते हैं सतयुग में, यहाँ नहीं। ये है विष्णु वंशी बनने का युग, संगम युग है, विष्णु वंशी बनने का युग। तुम यहाँ आते ही हो विष्णु वंशी में आने लिए, जिसको सूर्य वंशी कहते हैं। ज्ञान सूर्य वंशी अक्षर भी बहुत अच्छा है, बाबा कहते सिर्फ सूर्य वंशी नहीं ज्ञान सूर्य वंशी। हाँ, ज्ञान के आधार से स्वदर्शन चक्रधारी बनने से हम सूर्यवंशी बनते, तो ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर भी बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु वंशी बनने के लिए। क्यों आए हैं यहाँ? हाँ, क्यों आए यहाँ? लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु वंशी बनने के लिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है, हाँ वाह मैं विष्णु वंशी बन रहा हूँ, मैं लक्ष्मी नारायण बन रहा हूँ, खुशी भी बहुत होती है। नई दुनिया नई विश्व में गोल्डन एज विश्व में विष्णुपुरी बनना है, विष्णु वंशी बनना है। हाँ, यहाँ नहीं, कहाँ बनना है विष्णु वंशी? नई दुनिया नए विश्व में गोल्डन एजेड विश्व में विष्णु वंशी बनना है। इससे ऊंच पद और है नहीं, जितने भी पद है दुनिया में सबसे ऊंचा पद यही है विश्व का विष्णु, विश्व में विष्णु वंशी बनना नई दुनिया में। इससे ऊंच पद और है नहीं, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। मैं वो पद प्राप्त कर रहा हूँ जिनसे ऊंचा कोई पद है ही नहीं दुनिया में, तो कितनी खुशी होगी। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बोलो, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। एम ऑब्जेक्ट बताकर, लक्ष्मी नारायण का चित्र बताकर कहो कि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है, लक्ष्मी नारायण के चित्र में हमारा एम ऑब्जेक्ट है। बच्चों को यह बुद्धि में रखना चाहिए, कैसे लिखें, बाबा जी कहते कैसे लिखें जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे। वो लिखत हो तो वो पढ़े कोई और 1 सेकंड लगे बच्चों को समझाने में कि हम ये बनते हैं। तो ही समझा सकते हो, उसमें भी लिखा हुआ है हम विष्णु वंशी देवी देवता थे जरूर, अर्थात देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले क्या थे? भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले क्या थे? सूर्यवंशी देवी देवता थे। बच्चों को अब बुद्धि में आया है, शिव बाबा बच्चों को कहते हैं हे बच्चों, तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे, शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने, बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे, पुजारी कोई भी नहीं थे। उस सूर्यवंशी की दुनिया में कोई भी पुजारी नहीं थे, सब पूज्य थे, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। अभी तो कितनी सामग्री है पूजा की, बात मत पूछो। तो पूजा की कोई सामग्री नहीं थी, इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है। सब द्वापर से बनी है, तो वो पूजा की सामग्री, पूजा के बारे में जो भी लिखत बाबा कहते ये शास्त्रों में है, वो द्वापर युग से बने हैं, तो ये सारी सामग्री सब द्वापर युग से है। इन शास्त्रों में पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है, ये है सामग्री। सारे वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण जो भी उपनिषद, ये सब सामग्री है और उसमें पूजा की सामग्री लिखी हुई है। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं, वो है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको वृक्षपति, वृक्षपति को दूसरा नाम क्या देंगे, बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति शब्द कहाँ से आया, वृक्षपति से। तो शिव बाबा वृक्षपति है और वो बृहस्पति की दशा बिठाते हैं, तो उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंच से ऊंच होती है, वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हो, तो जो देवताएं निर्विकारी थे वो फिर कहाँ गए, कहाँ गए। हाँ, जब हम किससे पूछते ना वो कहाँ गए, तो कई प्रकार के उत्तर मिलते हैं। कोई मुश्किल से कहता है कि वो भी नीचे जन्म मरण में आए, वो तो यही कहते हैं वो तो लुप्त हो गए, वो तो वापस चले गए स्वर्ग लोक में चले गए, पता नहीं जो जो कहते हैं। परंतु वो जन्म मरण के चक्कर में आए, ये तो बाबा कहते कोई भी नहीं जानते। तो जो देवी देवताएं निर्विकारी थे वो कहाँ गए, 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन है, वो भारत में थे तो फिर कहाँ गए। जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे, तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर या कागज पर। किस पर नोट करना चाहिए, दिल पर भी और कागज पर भी, मुरली तो वही है ना, मुरली पर तो नोट है ही है, फिर वो दिल पर नोट करना चाहिए। ये कौन समझाते हैं, शिव बाबा, वही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं, बाप बिगर और कोई दे न सके। लौकिक बाप तो है देहधारी, तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा तो क्या याद करते हो, बाबा, ये कौन है बाबा। अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो, जिसको बाबा कहते हो, तो बाबा रेस्पॉन्ड करते हैं। तुम कहते हो बाबा, तो बाबा क्या रेस्पॉन्ड करते हैं, हे बच्चों। बाबा को बहुत अच्छा लगता था हे बच्चों। तो बेहद का बाप हो गया ना, हे बच्चों का मना एक बच्चा थोड़ी है, अनेक बच्चे हैं, तो बेहद का बाप हो गया ना। बच्चों तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने, ये है रावण का राज्य। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी मरता ही नहीं है। कैसे पता चलता है कि मरता ही नहीं है, कोई एक एक को अगर जला दिया तो मर गया ना, खत्म हो गया, फिर थोड़ी जलाते रहेंगे। पर रावण को हर वर्ष जलाते हैं, माना इसका से सिद्ध होता है कि मरता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी मरता ही नहीं है। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे, गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं। 12 मास के बाद फिर जलाएंगे, तो इससे क्या सिद्ध कर दिखलाते हैं कि हम रावण संप्रदाय के हैं, कि हम रावण संप्रदाय के हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे, अभी कलयुगी पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है, ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा वंशी संगम युग पर बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं, अभी शूद्र कुल के नहीं है, शूद्र कुल के नहीं है, हम ब्राह्मण हैं। इस समय है ही आसुरी राज्य, बाप को कहते हैं हे दुख हरता सुख करता। अब सुख कहाँ है? अब कहते तो है हे दुख हरता सुख करता, माना वो सुख देता है, पर अब सुख कहाँ है? तो कहाँ होता है सुख? कहेंगे सतयुग में, अभी तो सुख नहीं है। दुख कहाँ है? कहेंगे दुख तो कलयुग में है। सुख कहाँ है? तो कहेंगे सतयुग में है। दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा, वो वर्षा देते ही हैं सुख का। सतयुग को सुख धाम कहा जाता है, वहां दुख का नाम नहीं, नाम निशान नहीं होगा दुख का। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है वहां, तो दुखी नहीं है तो आयु भी बहुत बड़ी है, रोने की दरकार ही नहीं है। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ है। पहले बच्चा सतोगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से ऊंच समझते हैं। छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी से भी ऊंचा है। कोई अगर कोई अपने को महात्मा ब्रह्म ज्ञानी कहता है, लेकिन छोटा बच्चा उनसे भी ऊंचा है। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, वो तो क्या पता पहले गृहस्थी होगा, कितने बाल बच्चे भी पैदा किए होंगे, फिर जाके सन्यासी बनता है, क्योंकि वो तो फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बनते हैं, तो उनको सब विकारों का पता है। पर छोटे बच्चे को तो ये पता नहीं है, वो तो छोटा बच्चा है, उसको तो कुछ पता नहीं। तो छोटा बच्चा महात्मा के समान है, वो महात्माओं को तो फिर भी पता है, पर छोटे बच्चे को नहीं पता, तो महात्माओं से भी ऊंचा हो गया। तो छोटे बच्चों को ये पता नहीं रहता। तो इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य भ्रष्टाचारी राज्य है, श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, था अभी नहीं है, फिर होगा, तो हिस्ट्री रिपीट होगी। श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? अभी तो कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, तो फिर कौन बनावे श्रेष्ठाचारी? श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? यहाँ तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। ये समझाने के लिए बाबा कहते हैं बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है ही पारस बुद्धि बनने का युग, श्रेष्ठाचारी बनने का युग, पारस बुद्धि बनने का युग। तो बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहा जाता है कैसे बनाते हैं पारस बुद्धि पत्थर बुद्धि से? कहा जाता है संग तारे कुसंग डुबोए। तो पारसनाथ बाबा के संग में आते हैं तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग। एक ही बात, सत बाप के सिवाय बाकी सारी दुनिया में है ही कुसंग। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूँ। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं? अब संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाते हैं, फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं? कहते हैं हम क्या जाने। अब किसी नए से पूछो कि भगवान ने तो हमको संपूर्ण निर्विकारी बनाया, हम देवता थे, फिर हमको किसने बनाया संपूर्ण विकारी? वो कहेंगे हमें क्या पता। तो कहेंगे हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? तो वो तो बाप ही बनाएंगे, तो जरूर बाप ही बनाएंगे, तो विकारी कौन बनाते हैं? ये थोड़ी कहेंगे कि भगवान बनाता है, वो तो निर्विकारी बनाता है, वो तो सुख देता है, दुख थोड़ी देगा। लेकिन मनुष्य क्या समझे, भगवान ही दुख देता है, तो क्या भिखारी भी वही बनाता है क्या? तो बाबा कहते हैं निर्विकारी कौन बनाएंगे, बनाते जरूर बाप ही बनाएंगे, विकारी कौन बनाते हैं ये किसको भी पता नहीं है, क्योंकि विकारी बनने से ही दुखी बनते हैं ना, तो विकारी कौन बनाते ये किसको पता नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं क्योंकि रावण राज्य है ना, रावण राज्य में सब पत्थर बुद्धि तो कुछ भी नहीं जानते। कोई का बाप मर जाता है तो पूछो कहाँ गया, कहेगा स्वर्गवासी हुआ। अच्छा तो इसका मतलब नरक में था ना, स्वर्गवासी हुआ माना नरक में था, तो तुम भी नरकवासी ठहरे ना, नरक में था वो नरक में था तो तुम भी तो नरकवासी ठहरे ना। तो कितना सहज है समझाने की बात, अपने को कोई भी नरकवासी समझते नहीं है। उनको अगर कहो कि वो स्वर्गवासी हुआ इसका मतलब पहले नरकवासी था तो तुम भी नरकवासी हो, तो फिर कोई नहीं समझेगा या मानेगा मैं नरकवासी हूं। अपने को कोई भी नरकवासी समझते नहीं है। नरक को वैशालय, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। महाराजा महारानी थे, अभी तो कोई महाराजा महारानी नहीं है, तो कहाँ गए वो महाराजा महारानी, पुनर्जन्म लिया है। पुनर्जन्म सबसे जास्ती कौन लेता है? बाबा कहते सबसे जास्ती तुमने लिया है पुनर्जन्म, पूरे 84 जन्म इनके लिए ही गायन है। 84 जन्म जो पूरा लेते हैं उनके लिए ही गायन है। क्या गायन है? जो पूरा 84 जन्म लेते हैं उनके लिए गायन है कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो सबसे जास्ती बहुकाल तो देवी देवताएं ही रहे ना परमात्मा से दूर। तुमको याद है तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, फिर 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। पुकारते भी है ना, तो पावन बनना है तो पुकारते हैं पावन बनाओ, पतित पावन आओ, तो आओ पुकारते हैं। तो बाबा कहते हैं पतित पावन आओ पुकारते हैं तो सर्टिफिकेट देते हैं। किसको सर्टिफिकेट देते हैं? खुद को कि मैं पतित हूं, लेकिन बाबा कहते सर्टिफिकेट देते हैं परमात्मा को कि तुम ही पतित पावन हो, तुम ही पावन बना सकते हो, इसीलिए ये सर्टिफिकेट भगवान को देते हैं। इसलिए आओ फिर हमको पावन बनाओ। तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर के पावन बनाते हैं। खुद कहते हैं इसमें बैठकर, वो खुद कहते हैं पतित पावन कि मैं इसमें बैठकर तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी 84 लाख योनिया आदि तो है नहीं, 84 जन्म हैं। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है। कहाँ गई, कहाँ गई सतयुग की लक्ष्मी नारायण की प्रजा? तो जैसे सतयुगी लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं तो उनकी प्रजा भी तो 84 जन्म लेती है ना। तो बाबा कहते कहाँ गई वो प्रजा, उनको भी तो 84 जन्म लेना पड़े। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो फिर पहले नंबर में वही जाने चाहिए। जो पहले आए वो लास्ट तक रहे, फिर लास्ट से फिर पहले नंबर में उनको ही जाना है। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट, फिर से उसको रिपीट करना है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य को, क्योंकि वो हिस्ट्री है। हाँ कैसे सूर्यवंशी थे हमारे शास्त्रों में है, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य था वो फिर आएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट, फिर से उनको फिरना है, फिर से आना है। बाप तुमको लायक बना रहे हैं। तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में, जो यहाँ हमको बाबा इतना ऊंचा लक्ष्य देते हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो बाप कहते हैं, तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में जहाँ हम नर से नारायण बनते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वो ही पास होंगे। पास होने के लिए क्या करना होगा? अच्छी रीति पुरुषार्थ करना होगा। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई कम। ये राजधानी बन रही है। तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। श्री श्री की श्री मत पर हम श्री बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। अब तो किसको भी श्री नहीं कह सकते, क्योंकि श्रेष्ठ है ही नहीं, तो किसको हम श्री कैसे कह सकते। परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देते हैं। जो भी आएगा हर एक की किनकी महिमा गाएंगे तो श्री कहेंगे, तो सबको श्री कह देंगे, श्री फलाना श्री फलानी। अब श्री श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ था। रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। क्या भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अभी तो उस दिन कोई कह रहा था, कहीं अखबार में पढ़ा कि कभी भारत सोने की चिड़िया था ही नहीं। अरे कैसे कहते हो ऐसे, लेकिन उसने कह दिया, ऐसे कह दिया जैसे कि वो सब जानता है। था ही नहीं भारत, हमेशा से ही गरीब ऐसे ही कहते। अरे भारत इतना अमीर था, इतना धनवान, कितनों ने भारत पर आक्रमण किया, किस लिए किया? धन के लिए ही तो किया, और क्यों किया? आक्रमण किया ही इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा धनवान था। तो देखो इतने कंगाल हो गए, बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, जो ये मानते ही नहीं है कि भारत भी कभी इतना श्रेष्ठ था। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। अभी तो निंदा ही करते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते एक दो के लिए। तो भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। भारत बिल्कुल धनवान था, अब बिल्कुल कंगाल बना है ना? चरित्र में तो कंगाल है ही है ना। तो चरित्रवान जो भारत था, इतना ऊंच था, वो तो अभी नहीं रहा, तो बिल्कुल कंगाल बना है। देवताओं के आगे जाकर उनों की महिमा गाते हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं को कहते हैं, देवताओं को कहते हैं ये, परंतु वो रहम दिल थोड़ी थे। अब हमारे अंदर गुण नहीं तो आप ही तरस परो ही हमको गुण दो। अब देवताएं थोड़ी किस पर तरस खाकर उनको गुण देंगे। उनको भी गुण देने वाले तो शिव बाबा है, तो शिव बाबा ने उनको इतना गुणवान बनाया, पर वो थोड़ी किसको गुणवान बनाएंगे, वो तो शिव बाबा ही बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं देवताओं को कहते हैं हमारे अंदर कोई गुण नहीं। तो अब वो थोड़ी रहम दिल बनते हैं श्री देवताएं, वो रहम दिल थोड़ी थे। रहम दिल तो एक कोई कहा जाता है, हमारे ऊपर रहम करो। अभी देवताओं को कहते हैं, देवताएं कैसे रहम करेंगे? सतयुग में तो किसको रहम की जरूरत ही नहीं थी, वहां तो कोई नहीं कहता था कि हम पर रहम करो। कलयुग में कहते हैं, पर कौन करेगा रहम? वो तो एक परमात्मा ही करेगा। रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। जो मनुष्य से देवता बनाएगा वही रहम दिल है। अभी वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो गारंटी करते हैं शिव बाबा बाप टीचर सतगुरु गारंटी करते हैं। क्या गारंटी करते हैं? मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे, तो शर्त रखते हैं, फिर गारंटी करते हैं। ये तुम करो, क्या करो? हाँ, मुझे याद करो। याद करेंगे नहीं तो जन्म जन्मांतर के पाप कैसे भस्म होंगे? तो मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और मैं साथ ले जाऊंगा, ये गारंटी है। लेकिन कंडीशन रखते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे सब पापों को भस्म करूंगा, तुमको घर ले जाऊंगा, लेकिन उसके लिए क्या करो? मुझे याद करो। तो और साथ ले जाऊंगा, फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। ये 5000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी। दुनिया पतित होगी फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं, पावन मैं बनाता हूँ। हाँ, भगवान कहते हैं मैं बनाता हूँ पावन, रावण तो पतित बनाता है। बाकी ये जो तो ये तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं है, क्या ही क्या पता नहीं कि रावण के 10 शीश क्यों देते हैं। किसी को भी 10 शीश ऐसे होते हैं क्या? कभी नहीं। तो कहीं पूछते ना, 10 शीश होंगे, वो सोएगा कैसे, खाएगा किस मुख से, बोलेगा कौन से मुख से? हाँ, 10 शीश हो तो, क्योंकि शीश माना तो आंखें भी, तो मुख भी, तो कान भी, तो क्या 10 सिरों में ये सब होगा क्या? फिर 20 भुजाएं भी देते, पर टांगे केवल 2 ही देते। तो बाबा कहते हैं, तो बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं, पावन मैं बनाता हूँ। बाकी ये तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते, रावण भी बनाना जलाना भी जैसे गुड़ियों का है, उनको ये पता ही नहीं कि रावण को 10 शीश क्यों देते हैं। विष्णु को भी 4 भुजा देते हैं, परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़ी कभी होता है, 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़ी पैदा होता है। अगर कोई ऐसे पैदा भी होते ना, तो वो कोई ज्यादा कोई टिकते नहीं है, कोई अलग अलग कुछ ऐसा ढंग उनका शरीर का होता है बच्चा तो, परंतु ज्यादा टिकते नहीं है, हाँ जल्दी शरीर छोड़ देते हैं। परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़ी कभी होता है, अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो बाबा कहते हैं तो उससे जो बच्चा पैदा होता वो भी ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो सबको 2 भुजा है, कुछ भी जानते नहीं, भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं, उन्हों को भी कितने फॉलोअर्स उनके बन जाते हैं, बस कंठ कर लिया कोई शास्त्र और वो सुनाते हैं तो उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। कमाल है, बस शास्त्र कंठ कर लिया, थोड़े श्लोक कंठ कर लिए और उच्चारण करते रहे, फॉलोअर्स बन गए, कमाल है। ये तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है, ऐसे नहीं केवल श्लोक आपको रटाते हैं या याद कराते, ज्ञान की अथॉरिटी है शिव बाबा। कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो न सके। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, तो क्या क्या कहते हो? और आगे मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान, ये किसकी महिमा है? केवल परमात्मा की। ये बाप की महिमा है, ऑल माइटी अथॉरिटी। तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो, याद करते हैं तब ताकत मिलती है ना, ताकत लेते हैं, जैसे सूर्य से किरणें लेते हैं तो शिव बाबा से भी हम ऐसे ताकत लेते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, विश्व का मालिक बनना कोई सहज काम थोड़ी है, कितनी ताकत होगी उनमें, इसलिए तो विश्व के मालिक बने। तो बाबा कहते तुम्हारे में बहुत ताकत थी, हाँ तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे, सारी दुनिया पर अकेले राज्य करते थे। तो ऑल माइटी कहेंगे ना, ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे, ये माइट उनको कहां से मिली, इतनी ताकत कहां से उनको मिली जो सारे विश्व के मालिक बने। बाप से ताकत, बाप से मिली। तो ऊंचते ऊंच भगवान है ना, कितना सहज समझाते हैं। ये 84 के चक्र को समझना तो सहज है, तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना भी बहुत सहज है, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल न सके। कोई भी पतित व्यक्ति सारे विश्व का मालिक बन ही नहीं सकता है। जैसे बाहुबल से विश्व का मालिक नहीं बन सकते हैं, वैसे पतित मनुष्य भी विश्व का मालिक नहीं बन सकता है। पतित को विश्व की बादशाही मिल न सके। पतित तो उनों के आगे झुकते हैं, विश्व के मालिक के आगे झुकते हैं पतित, समझते हैं हम भक्त हैं। हाँ, वो भक्त समझते अपने आप को, तो पावन के आगे झुकते हैं, पावन के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है। अभी तुमको भगवान मिला है तो भगवानोवाच, क्या है भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। और क्या करता हूँ, मैं तुमको भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते भी हैं, भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। अभी भी कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। कल्कि अवतार मानते हैं, घोड़े पर, सफेद घोड़े पर, सफेद वस्त्रधारी होकर आएंगे। अभी घोड़े पर आने का मतलब क्या है, बाबा कहते हैं, गाते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। बाप कहते हैं, मैं कोई बैलगाड़ी में थोड़ी आऊंगा। शिव बाबा कैसे आएंगे, क्या बैलगाड़ी में आएंगे या घोड़े गाड़ी में आएंगे। हाँ, जो ऊंचते ऊंच था, फिर 84 जन्म पूरे किए, उनमें आता हूँ, उनके तन में आता हूँ। ऐसे नहीं कोई बैलगाड़ी में या बैल पर सवार होकर आता हूँ या कोई घोड़े गाड़ी में आता हूँ। पर जिसने, जो ऊंचते ऊंच था, फिर 84 जन्म पूरे किए हैं, उनमें ही आता हूँ। उत्तम पुरुष होते ही है, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष होते ही है सतयुग में। कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, तो बाप आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ये खेल है, खेल है। इसको अगर समझेंगे नहीं, इस खेल को समझेंगे नहीं, तो स्वर्ग में कभी आएंगे ही नहीं। क्योंकि इसको समझना, खेल को समझना माना स्वदर्शन चक्रधारी बनना, तभी तो चक्रवर्ती बनेंगे। इनको अगर नहीं समझेंगे तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है। एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। कुसंग से दूर रहना है। दूसरा, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने। हमारा लक्ष्य ये है, ज्ञान सूर्यवंशी, ज्ञान से ऐसा सूर्यवंशी बनना हमारा लक्ष्य ये है। वरदान, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्न आना ये अच्छी बात है, लेकिन विघ्न आते हैं तो घबराओ मत, डरो मत। हाँ, ये क्यों आया विघ्न, आए क्या होगा, जरूरत नहीं ऐसे सोचने की। तो इसलिए बाबा कहते हैं विघ्न आना ये अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। अब तूफान तो आते हैं पर हार न खिलाए, हाँ उसके उसमें फंस न जाए। लेकिन विघ्न हार न खिलाए, विघ्न आते ही हैं मजबूत बनाने के लिए। इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिवान बाप के साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। अरे कौन है मेरे साथ, सर्वशक्तिवान भगवान वो मेरे साथ है तो मैं क्यों डरूं, क्यों घबराऊं। तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो, ये बहुत जरूरी है। घबराने की बात नहीं है, पर बाबा भूल जाता है, सेवा भूल जाती है तो घबराते रहते हैं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है, बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। खाली मन शैतान का घर बन जाता है ना, तो माया तब आती है जब बिजी नहीं रखते अपने को। तब विघ्न व माया आती है, तो बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। स्लोगन, सुख के खाते को जमा करने के लिए क्या करना होगा? सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। मर्यादा पूर्वक, हाँ, मर्यादा से बाहर नहीं जाओ सुख देने लिए। तो सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। आज का व्यक्ति इशारा, आज 4 तारीख है, आज का व्यक्ति इशारा है, जब किसी को कोई खजाना प्राप्त होता है या अचानक कोई को थोड़ा सा धन मिल जाता है तो खुशी में आ जाते हैं। आप बच्चों को तो ऐसा धन मिला है, कैसा धन, जो कभी भी कोई छीन नहीं सकता, ऐसा धन लूट नहीं सकता। 21 पीढ़ी सदा धनवान रहेंगे, कोई आपका धन लूटेगा नहीं, कोई आपका धन छीनेगा नहीं। आप 21 पीढ़ी, हाँ बाबा कहते हैं सदा धनवान रहेंगे। आपको सब खजानों की चाबी मिल गई, वो चाबी है, सब खजानों की चाबी क्या है, बाबा। बाबा बाबा कहते थे, वो चाबी है बाबा। बाबा बोला और खजाना खुला, सिम सिम खुल जा, ये चाबी है, और खजाना खुल गया, माला माल हो गए। तो सदा इसी खुशी में भरपूर रहो। कोड वर्ड है बाबा, वो पिन कोड डालते हैं ना, या पिन डालते हैं, या वो पासवर्ड डालते हैं, तो ये पासवर्ड है बाबा। तो सदा इसी खुशी में भरपूर रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो आज 12 बजे आएंगे सिक्किम के चीफ मिनिस्टर भ्राता प्रेम कुमार। हाँ, बाबा का बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत सहयोगी है, बहुत स्नेह है संस्था से, और खास उसने कहा मैं आऊंगा। वहां पर सिक्किम में सोनम बहन है, वहां की है, तो वो सेंटर चलाती है, तो वहां बहुत उनकी सेवा की है, सारे परिवार की बहुत सेवा की है, बच्चों को भी बाबा का ज्ञान है। तो आएंगे यहाँ, 4 धाम की यात्रा करेंगे, भोजन करेंगे और फिर जाएंगे। अच्छा, और जो भट्टी में आए हैं भाई बहने, आप सबके लिए नाश्ते की व्यवस्था बड़े डाइनिंग हॉल में ऊपर की गई है, आप सब वहीं जाएंगे नाश्ता करने के लिए बड़े डाइनिंग हॉल में पांडव भवन। ओम।